ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਆਠਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਮ ਜਗਾਤ ਚੁਕਾਏ।
ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਯੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਕਰਮੋ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮੋਂ ਮੇਂ ਕਰਮ ਕੀਏ ਹੈ ਉਨਕਾ ਅਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਬੁਰੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਂ ਇਸ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਆਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਹਮਾਰਾ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਕਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਔਰ ਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਕਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹਮ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਤਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਆਕਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਕਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਆਗੇ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਕਬਾਬੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਮਨ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ, ਰਚਨਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲੋਂ, ਪਦਾਰਥੋਂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਯਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ ਕਹਿ ਕਰ ਯਾਦ ਕੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਖੇਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਚ ਕਾ ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇਂ ਉਸ ਖੇਤ ਮੇਂ ਮਿਰਚ ਕੀ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਸੇਬ ਕਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਸੇਬ ਕਾ ਫਲ ਖਾਨੇ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੜਨਾ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕੌਮੋਂ ਮਹਿਜ਼ਬੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕਰ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਕੀ ਜੰਜੀਰੇ ਉਤਰ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪੜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਗੋਂ ਔਰ ਬੈਕੁੰਠੋਂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵਹਿ ਵੀ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੀ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਪਰਜਾ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ, ਕਿਆ ਔਰਤ, ਕਿਆ ਆਦਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਜਨਮ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਉਸੀ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਹਮੇਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤੇ ਸਹਿਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਕਭੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਅਬ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਯੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਨੀਚੇ ਕੇ ਜਾਮੋ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਹਮੇਂ ਜੋ ਜੋ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤੇ ਭੋਗਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ, ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਕਭੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਸਭ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਤੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਏਕ ਤੋ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮੋਂ ਮੇਂ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਅਬ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਬ ਨਏ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਗੇ ਜਾ ਕਰ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣ ਜਾਏਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮੋਂ ਕੇ ਕਰਮ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਏਕ ਬੜਾ ਸਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੋਚੇ, ਅਗਰ ਏਕ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਕਰੀਓਂ ਕਾ ਗਲਾ ਕਾਟਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਓਂ ਕਾ ਗਲਾ ਕਾਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੇਂ 150-200 ਬੱਕਰੀਓਂ ਕੇ ਗਲੇ ਕਾਟਨੇ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਕੇ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਵੋ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਸਟੋਰ ਯਾ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮੋਂ ਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਤੱਕ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती, प्योर नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए हमें तीन तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना है। इन सब कर्मों का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारी आत्मा ने मन का साथ लिया हुआ है। इसलिए जब तक मन कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, तब तक आत्मा को इन कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में आकर दुखी होना पड़ता है। जब संत महात्मा देखते हैं कि हम दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर इस संसार में आकर बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े तड़प रहे हैं, तो वह हम पर दया मेहर बख्शिश करते हैं, या ये कह लो कि वह परमात्मा खुद इंसान का जामा धारण करके हमें दुखों के जाल से निकालने के लिए दुनिया में आ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा न रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताएं। वह कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा करता है। वह गुरु रूप में हमें मालिक की भक्ति में लगाता है और फिर वापस जाकर उस परमात्मा से मिला देता है। बुल्ले शाह ने कहा था, मौला आदमी बनाया। वह परमात्मा इंसान के जामे में इस दुनिया में आकर हमें यहाँ से निकालकर अपने साथ मिलाता है, या ये कह लो कि हमें यहाँ से निकालने के लिए अपने प्यारे पुत्र दुनिया में भेज देता है। उन संतों महात्माओं के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करने के लिए, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए भेज देता है, ताकि हम उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर मालिक की भक्ति करके इन कर्मों के सिलसिले को ख़त्म कर सकें और वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। जो मालिक के भगत और प्यारे हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है? ज्यों जल तरंग उठे बह पाती, फिर सल्ले सल समाइंदा। समुन्दर के अंदर दो चार मिनट के लिए लहरें उठती हैं, वह लहरें फिर समुन्द्र में ही समा जाती हैं। जो एक लहर का समुन्द्र से संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का, गुरमुखों का उस परमात्मा से संबंध है। लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह समुन्द्र से अलग कभी नहीं होती, समुन्द्र का ही हिस्सा रहती है। अगर कोई चीज़ हम उस लहर के स्पुर्द कर देते हैं, लहर उस चीज़ को साथ लेकर समुन्द्र की तय में जाकर समा जाती है। इसी तरह संत महात्मा उस सतनाम समुन्द्र की लहरें होते हैं। वह देह में होने के कारण हमें मालिक से अलग लगते हैं, लेकिन असल में उनसे अलग नहीं होते। वह दुनिया में आकर शब्द या नाम का मालिक की भक्ति और प्यार का होका देते हैं, और हमारे ख्याल को भी उस शब्द या नाम से जोड़कर हमें भी साथ लेकर हमेशा के लिए सतनाम समुन्द्र में समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरमुखों से प्यार करते हैं, उन गुरमुखों की संगत करते हैं। जब परमात्मा हमें कर्मों के जाल से छुड़ाना चाहता है, तो वह संतों महात्माओं को हमारे पास भेज देता है। स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाते हैं? धाम अपने चलो भाई, प्राय देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, प्राय काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालक का इश्क, मालक का प्यार है। तुम व्यर्थ इस दुनिया में आकर परदेसियों की तरह भटकते फिरते हो, तड़पते फिरते हो। यहाँ से अपने घर वापस जाओ, अपने असल की खोज करो, अपने असल से मिलने की कोशिश करो। तुम यहाँ प्राय धंधों में सारी उम्र फंसे रहते हो। प्राय धंधे कौन से हैं? बेटे बेटियों के काम काज, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई, धन दौलत के काम काज हैं। उस मालिक की भक्ति के अलावा हम इस देह में बैठकर जो जो भी धंधे करते हैं, स्वामी जी महाराज इन सब को प्राय धंधे कहते हैं। आप फरमाते हैं कि ये इंसान का जामा मालिक ने तुम्हें प्राय धंधों के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें प्राय काम के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें अपने काम के लिए बख्शा है। अपना काम कौन सा है? जो देह के बंधनों से आज़ाद करता है, जो हमें वापस जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह क्या काम है? नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। उन गुरमुखों के पास जाकर मालिक की भक्ति करो, शब्द या नाम की कमाई करो। ये तुम्हारा असली काम है, तुम्हारा असली तोशा है। इस दौलत को हासिल करके जिंदगी के भी चार दिन सुख और शांति से काट जाओगे और इसे पल्ले बांधकर दुनिया में से भी साथ ले जाओगे। बाकी जो मर्जी दुनिया के अंदर धन दौलत या जमीन जायदादें इकट्ठी कर लो, बेटे बेटियों का प्यार इकट्ठा कर लो, कौमों मजमों की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लो, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं देना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तोसा बंदो जिए का एथे ओथे नाल। मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ होगी और मौत के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। जो चीज़ें यहाँ तुम्हारे साथ हैं वह लोग यहीं तुमसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे और मौत के बाद ये तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावे कोई संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर कोई चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब भी मुक्ति प्राप्त करोगे केवल नाम या शब्द की कमाई करके करोगे। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम के सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें उनके समझाने के मुताबिक सिमरन के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को फिर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। लेकिन जब तक हम किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान यहाँ टिकता नहीं। ध्यान को आँखों के पीछे ठहराने के लिए हम किसके स्वरूप का ध्यान करें? परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं है। हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा असली गुरु भी शब्द है, नाम है। परमात्मा का भी असली स्वरूप शब्द है, नाम है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, वाओ वाओ वाणी निरंकार है। वह वाणी शब्द या नाम ही परमात्मा है। हजरत ईसा ने कहा था, वर्ल्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ल्ड वॉज गॉड। शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द परमात्मा था, यानी शब्द ही परमात्मा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द गुरु सुरतुन चेला। हमारा असली गुरु ही शब्द है और ये जो हमारी आत्मा है उस शब्द की सेवक है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुख भी यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन जो सेवक शरीर के अंदर बैठकर अपने ख्याल को गुरुमुखों के जरिए अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता। हम इसलिए उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं ताकि उनके ध्यान के जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, जो हमारा असली गुरु है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है और हमारी आत्मा उसी शब्द की एक किरण है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बीज रूप में हर इंसान परमात्मा है, परमात्मा का रूप है। आप देखें, समुद्र में पानी है, बादलों में भी पानी है, धरती पर मैल इकट्ठी कर चुका भी वही पानी है। धरती पर मैल से भरे गंदे पानी को पता नहीं है कि मेरे अंदर भी वही चीज़ है जो बादलों के अंदर है, जो समुद्र के अंदर है। चाहे असल में वह तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन जब तक वह गंदगी वाला पानी गंदगी को नहीं छोड़ता, तब तक वह बादलों के अंदर नहीं समा सकता, और जब तक वह बादलों में नहीं समाता, वह बरसात बनकर समुद्र में नहीं समा सकता, समुद्र का रूप नहीं बन सकता। यही हमारी सबकी आत्मा की हालत है। असल में आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। और गुरुमुखों का स्वरूप भी शब्द है, गुरुमुखों का स्वरूप भी नाम है। हम सतगुरु से प्यार करते हैं ताकि उनके जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए। जिस वक़्त सिमरन और ध्यान के जरिए गुरुमुखों के समझाने के अनुसार हम अपने ख्याल को अंदर आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, हमें खुद ब खुद अंदर से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, हमारे हर एक की आंखों के पीछे धुनकार दे रही है। उसको स्वामी जी महाराज ने मूल कलाम कहकर याद किया है, अनहद शब्द कहकर बयान किया है। संतों महात्माओं ने उसको निर्मल नाद कहकर बयान किया है। उसको किसी ने धुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म अकथ कथा कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीरों ने उसको कलमा, बांगे आसमानी, कलाम इलाही कहकर बयान किया है। किसी ने राम नाम कह दिया, किसी ने राम धुन कह दिया, किसी ने देव धुनी कह दिया। हमारा लफ्ज़ों से कभी कोई बहस मुबासा नहीं है। जब भी सिमरन और ध्यान के ज़रिए हम ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर धुनकार धुनें उठ रही हैं, निर्मल नाद उठ रहा है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, उस शब्द के अंदर प्रकाश भी है। उस ज्योति को देखकर, उन धुनकार धुनों को सुनकर हमारा मन लीन हो जाता है। जो मन इंद्रियों के भोगों, दुनिया की शक्लों पदार्थों, बेटे बेटियों, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई या धन दौलत का आशिक था, शब्द की लज्जत हासिल करके इसमें से दुनिया का सब मोह, दुनिया का सब प्यार निकल जाता है। उस शब्द या नाम की अटैचमेंट, उस शब्द या नाम का मिलाप या प्यार हमें दुनिया की तरफ से हमेशा के लिए डिटैच करना शुरू कर देता है। उसका प्यार हमें दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है। जब भी हम मन को शब्द के साथ जोड़ते हैं, वह अपने अंदर से शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर का शब्द महारस मीठा। जिस शब्द के साथ गुरमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। महारस मीठा इसलिए कहा है कि जो दुनिया के पदार्थ, दुनिया की शक्लें मीठी लगती हैं, फिर वह हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के साथ तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। उस शब्द का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया से विरक्त करना शुरू कर देता है। जब शब्द को पकड़कर हमारा मन वापस त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है, तब आत्मा उसके पंजे से आज़ाद हो जाती है, रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उस अवस्था में हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। कर्मों का संबंध मन के साथ था, आत्मा मन के अधीन थी, इसलिए हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए थे। मन को इंद्रियां काबू किए बैठी थी, मन हमारी आत्मा को काबू किए बैठा था। अब हमने शब्द की कमाई करके सारा सिलसिला ही उल्टा कर लिया। हमारी आत्मा ने मन को काबू कर लिया और मन ने इंद्रियों को काबू कर लिया। इसलिए जितने भी कर्म जो भी हमें बार बार दुनिया में खींच कर लाते थे, वह सारे कर्म नाश हो जाते हैं, कह लो जल जाते हैं, कह लो खत्म हो जाते हैं। हमारी आत्मा को नीचे खींच कर नहीं ला सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुरु पुरख अमृतसर वड पागी नामे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दढ़ाए। ये जितने भी हमारे कर्म हैं, नाम की कमाई द्वारा खत्म हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसी को गुरु अमरदास जी ने कहा था, शब्द साथ जाने ता आप पछाणे। जिनको शब्द या नाम की लज्जत आ गई, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। जब तुम शब्द के अंदर मर जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जिसने आपको ठिकाने पर पहुँचाना है। कह लो हमारा मन निर्मल हो गया, शुद्ध और पवित्र हो गया। कह लो हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। कह लो हम मन और माया के दायरे से पार चले गए। हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया, एक ही बात है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी बार। ये कर्म हैं जिनके कारण बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब शब्द के अंदर लीन हो गए तो सब कर्मों का नाश हो गया, फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है। ये सब चीज़ें उस अवस्था के बारे में समझा रही हैं। कह लो मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो गया, कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया, या ये कह लो कि हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली, क्योंकि वहाँ मन और माया से पार सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। वहाँ पहुँचकर हमारी आत्मा सतगुरु में जज़ब हो जाती है, सतगुरु में लवलीन हो जाती है और हम सतगुरु का ही स्वरूप बन जाते हैं। यही सतगुरु की असली शरण हासिल करना है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगा चुकाए। भाई, तू कर्मों का महसूल या टैक्स खत्म करना चाहता है, कर्मों का सिलसिला खत्म करना चाहता है तो एक ही तरीका है कि तू सतगुरु की शरण हासिल कर, उनके बताए हुए उपदेश पर चल, शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के दायरे से पार चला जा और अपने आप को बिना शर्त सतगुरु के हवाले कर दे। सतगुरु के अंदर अपने आप को जज़्ब कर दे, सतगुरु के अंदर अपने आप को लवलीन कर दे। हमने क्या करना है? आत्मा अपने आप सतगुरु में जज़्ब हो जाती है, अपने आप जाकर सतगुरु में लवलीन हो जाती है। इस तरीके से हम सतगुरु की शरण हासिल कर लेते हैं और हमेशा के लिए हमारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सतगुरु की शरण हासिल करने का एक और भी तरीका है, वह तरीका प्रेम है, विरह है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात, जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरमुख को गुरु का गात। खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, खटकत रहे भाल ज्यों हेरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जांकी, वह गुरमुख परमारथ पात। आप खास प्रेमियों के लिए कहते हैं कि उनका सतगुरु से इतना प्रेम है कि उनको सतगुरु के सिवाय दुनिया में और कुछ नज़र ही नहीं आता, उनको सतगुरु के सिवाय किसी चीज़ की होश नहीं, उनके लिए सतगुरु के सिवाय कुछ है ही नहीं। गुरु अर्जन साहब ने कहा था, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु के बिना हमें इस रचना में कुछ भी नज़र नहीं आता, ये भी सतगुरु की शरण हासिल करना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, दर्शन पेटत पाप सब नासे। जब हम अपने आप को दर्शनों की भेंट कर देते हैं, हमारे सब पाप नाश हो जाते हैं। दर्शनों की क्या भेंट है? सारी दुनिया में से हमारा मोह या प्यार निकल गया, एक सतगुरु के साथ हमारा प्यार पैदा हो गया और ये जो प्यार है ये सतगुरु के आगे हमने भेंट कर दिया। मन का प्यार से संबंध है और मन हमेशा के लिए सतगुरु के आगे भेंट कर दिया। जो चीज़ हम भेंट कर देते हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, वह पूरी तरह दूसरे की हो जाती है, हमारी नहीं रहती। कर्मों के सिलसिले का मन से संबंध है। जब मन ही सतगुरु के सुपुर्द हो गया और सतगुरु हमारे मन के मालिक बन गए तो कर्मों के हिसाब किताब का उनको फिक्र होगा, फिर हमें उन कर्मों का क्या फिक्र हो सकता है? गुरु साहब का दर्शन पेटत पाप सब नासे से ये मतलब है कि जब हमने अपने आप को सतगुरु को भेंट कर दिया, सारी दुनिया में से मोह या प्यार निकाल कर एक सतगुरु को प्रेम का निशाना बना लिया, तो हमारा दुनिया में से किसी से प्यार ना रहा, फिर हमें दुनिया में कुछ सूझता ही नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आता और इन सब कर्मों का सिलसिला अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम प्रेम के जोर पर ही सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रेम का संत महात्मा जिक्र करते हैं वह किसी भाग्यशाली एक दो जीवों को ही मिलता है, बाकी करनी हम सभी कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं करेंगे ये कर्मों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए या तो हम सुरत शब्द का अभ्यास करके मन और माया के दायरे से पार जाएंगे, या सतगुरु से प्यार करके हम मन और माया के दायरे से पार जाएंगे। ये जो सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, ये भी प्यार के बिना नहीं होती, ये भी हमारे अंदर सतगुरु का प्रेम पैदा करती है, सतगुरु का प्यार पैदा करती है। जितनी अंदर शब्द या नाम की लज्जत आती जाती है उतना ही हमारा सतगुरु से प्रेम बढ़ता जाता है, सतगुरु से प्यार बढ़ता जाता है। जितना सतगुरु से प्रेम बढ़ता जाता है उतना ही हमारा दुनिया में से मोह निकलता जाता है, दुनिया में से प्यार निकलता जाता है। परमात्मा और सतगुरु में कोई भिन्न और भेद नहीं है, इसलिए जितना हम सतगुरु के निकट होते जाते हैं उतना ही हम परमात्मा में समाते चले जा रहे हैं।
भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात ना काहू सुहाए।
अब आप दुनिया की ओर नजर डालकर समझाते हैं कि ये लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक इंसान इंसान की भक्ति इंसान के प्यार में लगा हुआ है, उसके बताए हुए उपदेश पर चलकर अंदर शब्द को सुनने में लगा हुआ है। इन मंदिरों में गुरुद्वारों और मस्जिदों में जाकर हम क्यों मुक्ति नहीं हासिल कर सकते? लोग ईंट पत्थरों में सरोवरों के स्नानों में ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने में मुक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में मुक्ति हासिल करने के लिए छिपे हुए हैं। कोई गरीब कान चरा रहा है, कोई जटाएं बढ़ा रहा है, कोई जिस्म पर बबूत लगा रहा है। लोग महात्माओं की समाधियों पर दिन रात माथे टेक रहे हैं, उनके बुतों और तस्वीरों के आगे माथे टेक रहे हैं। उनको ये बात अजीब सी लगती है कि गुरुमुखों के कहने के मुताबिक अंदर जाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। गुरु अमरदास जी ने कहा था, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लेव लाई। जो लोग दुनिया में से मोह या प्यार निकाल कर एक शब्द में ख्याल जोड़ लेते हैं, वह खुद भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें भी हमेशा के लिए पवित्र कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी ने समझाया था, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता सब देखोवे। हम दुनिया के सब जीव हौमे और ममता की बीमारी में फंसे हुए हैं। जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौमे और ममता की बीमारी को दूर कर लेते हैं, वह मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जब हम उनकी संगत करते हैं, उनकी शरण हासिल करते हैं, तो हम भी उनकी तरह शब्द की कमाई करके मुक्ति हासिल कर लेते हैं और उन जैसे ही मुक्त बन जाते हैं। दुनिया को ये बात बड़ी अजीब लगती है, अनोखी लगती है। वह कहते हैं कि इतने इतने पुराने तीर्थ हैं, इतनी इतनी उनकी महानता है, इतने इतने हजारों सालों से लोग वहाँ जाकर मालिक की बंदगी करते आए हैं। ये संत महात्मा अनोखी अनोखी बातें कर रहे हैं कि अंदर जाकर कानों में उंगली देकर शब्द को सुनना शुरू कर दो, अंदर शब्द का प्रकाश दिखना शुरू कर दो। वह कहते हैं कि हम अंदर जाकर किस तरह मुक्ति हासिल कर सकते हैं? किसी बड़े गुरुद्वारे के अंदर से परमात्मा मिलेगा, किसी बड़े मंदिर के अंदर से परमात्मा मिलेगा। वह पहाड़ों के पीछे छुपा होगा। वह हमेशा बाहर ही बाहर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। भक्ति तो सारी दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक परमात्मा की कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश ज़रूर परमात्मा की तरफ जोर मारती है। उस कशिश के अधीन सारे ही मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाए न पाई, कि हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। मन हमें बारमुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींच कर ले जाता है, बारमुखी साधनों में फंसा देता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन परम्या लै न सकाई है। हमारे अंदर मालिक ने बेशुमार भक्ति के खजाने रखे हुए हैं। वह खुद हमारे शरीर हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये मन बाहर के वहमों को नहीं छोड़ता, कर्मों को नहीं छोड़ता, बाहरमुखी साधनों में फंसा हुआ है। फिर ये इतनी ऊंची और निर्मल दौलत को हासिल किस तरह कर सकता है? कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज़ कहीं है ढूंढने हम कहीं और लगे हुए हैं, अपने कीमती वक़्त को फजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं कि किस तरह दुनिया के जीव बाहरमुखी साधनों में फंसे हुए हैं। आप इतिहास पढ़कर देखें, संत महात्मा अपनी ज़िंदगी के 50-50, 60-60 साल खर्च करके हमें इन वहमों भरमों संकल्पों बारमुखी साधनों में से निकालते हैं। वह हमसे रुपया पैसा नहीं लेते, वह कोई कौम नहीं बनाते, कोई मज़हब नहीं बनाते, कोई मुल्क नहीं बनाते। उनको हमसे कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए हमें समझाते हैं। लेकिन वह आँखें बाद में बंद करते हैं, हम झट उनकी समाधियां बनाकर माथे रगड़ने शुरू कर देते हैं। उनकी खड़ाओं की, उनके बुतों की, मकानों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम उनके बनाए हुए सरोवरों कुओं के पानी पीने को मुक्ति समझ लेते हैं। उनके लेखों को पढ़ना पढ़ाना मुक्ति समझकर बैठ जाते हैं। जो उनका उपदेश है उस उपदेश पर हम कभी चलने की कोशिश नहीं करते, फिर हमको उनकी तलीम से क्या लाभ मिल सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हर नामे तुल न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। हम ठोक बजाकर जाति तजुर्बा निजी अनुभव तुम्हें समझाते हैं कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु अमरदास जी ने बहुत दिलेरी के साथ उपदेश किया है, बिन नामे होर पूजना होवी परम पुली लोकाई। नाम की कमाई के बिना तो मालिक की कोई भक्ति या पूजा हो ही नहीं सकती। व्यर्थ दुनिया वहमों भरमों में फंसकर भूली फिरती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम विसार चले अन मार्ग अंतकाल पछताई है। अगर नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर बारमुखी साधनों द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करोगे, तुम्हें आखिर मौत के वक़्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ता है? बिन नाम में दर टोई नाहीं ता जम खरे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कभी तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकते, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। लेकिन सोच लो, हम कौन से वहमों भरमों में फंसे हुए हैं। हम ईंटों पत्थरों को ही दिन रात माथा टेकते चले आ रहे हैं। महात्मा के समझाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मन इतना जोर मारता है कि हमें फिर बाहरमुखी कर देता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि माया इतनी प्रबल है, माया का इतना जोर है कि जिस जगह पर संतों महात्माओं के चरण पड़े वहाँ संगमरमर लगा दिया गया है कि वह मिट्टी भी कहीं इनके माथे को ना लग जाए। कहीं चांदी मर देते हैं, कहीं सोना मर देते हैं, ताकि वह चीज़ भी कहीं किसी के हाथ में ना लग जाए। हम हमेशा बारमुखी चक्रों में ही फंसे रहते हैं। महात्मा के असली उपदेश पर असली तरीके से चलने की कोशिश नहीं करते।
पागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई ना पाए।
आप अफसोस करते हैं कि दुनिया के जीव बड़े खोटे भागे वाले हैं, ये मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इनको विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये मन में सोचकर बैठे हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा था, बाबा जग फाथा महाजाल, कि दुनिया बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसी हुई है। कोई भाग्यशाली जीव है, कोई सूरमा है, बहादुर है, जो यहाँ आकर काल के जाल को तोड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा माया के जाल में ही फंसे रहते हैं। ये जो निर्मल गति है, ये जो असली रास्ता है कि सतगुरु की शरण हासिल करके उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर अपने आप को शब्द या नाम में लीन करके कर्मों का हिसाब किताब खत्म करें और रूह और मन की गांठ खोलकर रूहानी तरक्की करके मालिक के साथ मिलाप करें, इस रास्ते पर कोई बिरला भाग्यशाली जीव ही चलता है।
जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाहे।
जब आप देखते हैं कि दुनिया के जीवों की ये हालत है, तो आप ही सोचते हैं कि इन बेचारों का कसूर भी क्या है। जिसको परमात्मा ही भुला दे, वह इस भूल भलैया में से किस तरह निकल सकता है। जब तक वह परमात्मा वह आदि करता किसी पर दया मेहर बख्शिश नहीं करता, किसी का ख्याल माया के मोह में से माया के जाल में से किस तरह निकल सकता है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, हर साचे पावे सा पूजा होवे, कि भाई उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा, तो तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, हम दुनिया के मोह या प्यार के अंधेरे में फंसे हुए हैं। वह परमात्मा आँखों वाला है, वह सच्चा है, पवित्र है, ऊंचे से ऊंचा है। हम इतने नीचे हैं, गंदे हैं, हमारी क्या ताकत है कि हम इतने ऊंचे और पवित्र परमात्मा को पकड़ सकें जब तक वह खुद दया करके, मेहर करके, बख्शिश करके हमें अपने साथ नहीं मिलाता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिसनू दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। ऐ परमात्मा, जिस पर तू दया मेहर बख्शिश कर देता है उसको ही तेरे साथ मिलने का गौरव प्राप्त होता है। यहाँ किसी की बुद्धि, किसी की अकल, किसी की चतुराई काम नहीं देती। गुरु अमरदास जी ने इसलिए फरमाया था, जीवन मरना सब तो देताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। हे परमेश्वर, हमारा हर एक का मरना और जन्म लेना तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू दया मेहर करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बढ़ाई मिलती है। मालिक किस तरह दया करता है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म हो वह सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। जब वह परमात्मा दया मेहर बख्शिश करेगा, जब वह हमें दे के बंधनों से छुड़ाना चाहेगा, वह हमें गुरुमुखों की संगत दे देगा, साधु संतों महात्माओं की सोबत दे देगा। वह हमें सुरत शब्द का अभ्यास करने का तरीका बता देंगे, साधन समझा देंगे। जब हम सुरत शब्द की सेवा करेंगे, सुरत शब्द की कमाई करेंगे, हमारा दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाएगा, मालिक से मोह या प्यार पैदा हो जाएगा। एक दूसरी जगह गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जब वह परमात्मा हमें इस रचना की भूल भलैया से निकालना चाहता है, खुद ही गुरुमुखों के जरिए हमारे अंदर शब्द बसा देता है। अभी हमारे अंदर क्या बसा हुआ है? बेटे बेटियों का प्यार बसा हुआ है, कौमों मजमों मुल्कों की मान बढ़ाई बसी हुई है, धन दौलत की भटकना बसी हुई है। जब मालिक हमें यहाँ से निकालना चाहता है, वह इन चीज़ों का प्यार हमारे अंदर से निकाल देता है, हमारे अंदर शब्द बसा देता है, नाम बसा देता है। जिस अमृत का यहाँ स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। वह नाम ही अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि उसको पाकर दुनिया की लज्जतें फीकी हो जाती हैं। वह अमृत कहाँ मिलता है? नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिस अमृत का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत आज तक कभी किसी को बाहर से नहीं मिला। आँखों के नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। वह जो रस का भरा हुआ अमृत है, वह तो आँखों के पीछे दिन रात बरस रहा है। उस अमृत को तो हम आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके ही पी सकते हैं। आप देखें, कितनी भी बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर बर्तन को ही उल्टा करके रख देंगे, उस बर्तन के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं जा सकती। जिस मन को अमृत पीना है, वह तो आँखों के पीछे से उतर कर सारी रचना में फैला हुआ है। जब तक वह सिमट कर आँखों के पीछे आकर नहीं ठहरता, वह अमृत किस तरह पिएगा? जब मन यहाँ टिक जाएगा, तभी वह अमृत को पी सकेगा, जिसको मुसलमान फकीरों ने आबे हयात भी कहा है। हजरत ईसा ने जिसको लिविंग वाटर कहकर बयान किया है। ये वह अमृत है जिसको पीकर हम अमर हो जाते हैं, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है।
कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चीनत ताहे।
कौन से जीव अपने अंदर उस अमृत को पीते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वे विरले भाग्यशाली जीव हैं। कोटिन में नानक को, लाखों करोड़ों में गिनती के जीव हैं जो मन और माया के दायरे से पार जाकर उस अमृत को पीते हैं। वे मालिक के सच्चे आशिक हैं, मालिक के सच्चे भगत हैं, जो दिन रात उस अमृत को पीकर गुरमुख बन जाते हैं। उनका हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। गुरमुख लोग अंदर राम नाम से लिव लगाकर, राम नाम का अमृत पीकर अपने आप को पहचान लेते हैं। महात्मा गुरमुख उनको ही कहते हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, जिनके कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनकी गति कभी बयान ही नहीं की जा सकती। आप सोचें, लड़की की शादी हो जाए, उससे पूछें कि पति कैसा लगता है, वह शर्माकर आंखें नीची कर लेती है। क्या वह बयान कर सकती है? गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बयान कर सकता है? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह गुरमुख जो अमृत को पीते हैं, मैं उनकी गति का क्या बयान करूं?
बिन गुर चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए।
आप उन गुरमुखों की हालत बयान करते हैं जो सतगुरु के नूरी स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, हमेशा इस आनंद में ही मस्त रहते हैं। सोए हों, जागते हों, जंगलों में हों, पहाड़ों में हों, वह हमेशा उस मस्ती में ही रहते हैं। उनको दुनिया के अंदर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनका ध्यान किसी चीज़ की ओर जाता ही नहीं। वह तो मस्त हुए फिरते हैं, सतगुरु के आशिक हुए फिरते हैं।
दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए।
उन आशिकों की हालत बयान करते हैं कि जब सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उनको अपने आप का होश नहीं रहता, फिर उनको घर बाहर का क्या होश रहेगा। उनको दुनिया की किसी चीज़ का कोई होश नहीं है, दुनिया के तानों की क्या परवाह होगी। वह तो सतगुरु में ही मस्त हुए फिरते हैं, उस भक्ति या प्यार के आनंद में ही दिन रात मस्त रहते हैं। उनकी गति क्या बयान की जा सकती है, उनकी हालत क्या बयान की जा सकती है।
ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए।
सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि उनकी आत्मा उस प्रेम और प्यार के रंग में रंग जाती है। वह मालिक के सच्चे आशिक हो चुके हैं, वह मालिक के सच्चे प्यारे बन चुके हैं। वह शब्द के रंग में रंग गए हैं, नाम के रंग में रंग गए हैं। कोई लफ्ज़, कोई ज़बान उनकी निर्मल गति का बयान ही नहीं कर सकती। उनकी गति वही समझ सकते हैं, वही जानते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। कारबार छोड़ने से, बेटे बेटियों को त्यागने से, भगवे नीले सफ़ेद पहनने से कभी कोई परमहंस बैरागी नहीं बनता। जो नाम के रंग में रंगे जाते हैं, वह घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लेव, उनकी वृत्ति, कशिश सीधी अपने घर की तरफ होती है। उनको अपने इष्ट या प्रीतम के स्वाय दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आता।
जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए।
अब थोड़ा सा इशारा करते हैं कि योग, वैराग्य या इसी तरह के हट कर्म और ज्ञान मार्ग में भक्ति के जो भी तरीके या साधन हैं, आप कहते हैं कि उनके रस प्रेम और भक्ति के मुकाबले में बहुत रूखे हैं। वह जो प्रेम भक्ति है, जो सतगुरु का इश्क और प्यार है, जो मालिक का इश्क और प्यार है, जो भक्ति के प्यार का रस है, उसको कभी बयान नहीं किया जा सकता। उस रस में मालिक के आशिक हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते हैं। आप मीरम बाई के शब्द पढ़कर देखें, कितने विरह और प्रेम के शब्द हैं। जो उससे कोई कहे कि तू छोड़ इस तरह के प्रेम को, क्या लेना है, दुख भोग रही है, तो क्या वह ये बात मान लेगी? वह दुनिया छोड़ देगी, प्यार कभी नहीं छोड़ेगी। उनके लिए उस प्यार में ही आनंद है, वह दुनियावी सेपरेशन में ही खुशी महसूस करते हैं। अगर कोई लड़की से कहे कि बच्चा होने के समय बड़ी तकलीफ होती है, शादी का कोई फ़ायदा नहीं, तो वह ये बात नहीं मानती। वह माँ बनने की खुशी के लिए इस तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह जो मालिक के आशिक भगत और प्यारे होते हैं, उन्हें इस सेपरेशन, उस प्रेम और प्यार में ही खुशी मिलती है। जुदाई में तड़पते भी हैं, व्याकुल भी होते हैं, लेकिन अगर उनसे कहो कि मालिक का प्यार छोड़ दो, सतगुरु का प्यार छोड़ दो, तो वह सारी दुनिया छोड़ देंगे, उसकी भक्ति उसका प्यार कभी नहीं छोड़ेंगे।
बड़ पागी कोए बिरला प्रेमी, तिन ये नियामत मिली अधिकाए।
ये जो प्रेम के जरिए सतगुरु की शरण हासिल करने का आपने तरीका या साधन समझाया है, आप कहते हैं कि ये विरले भाग्यवान प्रेमियों के लिए है, कोटिन में नानक को प्रेमियों के लिए है। करनी बड़ी अच्छी चीज़ है, हम सबको करनी चाहिए। ये तो मैंने शुरू में ही अर्ज़ की थी कि लाखों करोड़ों में से कोई एक आधा जीव है जिसमें परमात्मा अपने इश्क का, अपने सतगुरु का इतना प्यार भर दे। नहीं तो करनी के ज़रिए हम सारे ही अपने अंदर वह प्रेम और प्यार पैदा कर सकते हैं, सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, हरख शोक का नगर एकिया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। ये सारी दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है, पुण्य और पाप की नगरी है। यहाँ पुण्य का भी हिसाब देना पड़ता है, पाप का भी हिसाब देना पड़ता है। अगर हम पुण्य और पाप का हिसाब खत्म करना चाहते हैं, तो हमें सतगुरु की शरण हासिल करनी पड़ेगी। सतगुरु की शरण हासिल किए बगैर इन कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुरु कब मिलते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार जाकर उनके नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं और अपने आप को उनके आगे भेंट कर देते हैं, अपने आप को उनके स्पुर्द कर देते हैं। जब अंदर जाकर उनमें समा जाते हैं, तो कर्मों का, पापों का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाता है।
राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए।
सब कुछ बयान करके आप समझाते हैं कि जो कुछ भी मैंने पहले बयान किया है, वह गुरमुखों की हालत है, गुरमुखों की अवस्था है। गुरमुख वही है जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जिनका दुनिया में से मोह या प्यार निकलकर एक परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज के समझाने के मुताबिक सुरत शब्द की कमाई करके अपने अंदर परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा करें, अपने आप को परमात्मा की सच्ची शरण के काबिल बनाएं और कर्मों के बंधन तोड़कर उस मालिक में समा जाएं।
राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए।